ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः सर्वशास्त्रामृति पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित ग्रंथा श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 24 अध्याय शिष्य कर्दमुनि का वैराग्य। कल के श्लोक की पुनरावृत्ति करेंगे 41 श्लोक। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनम् एव जगामः। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपीलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। एवं समुदितस्तेन कपीलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः।
Thank you.
এবার বললাম শব্দ আপনি মৈত্রে উচ মৈত্রে মুনি নে কহা এবং ইস প্রকার সমুদিত সম্বোধিত হোকর তেনা উনকে দ্বারা কপিলেনা কপিল দ্বারা প্রজাপতি মানব সমাজজনক দক্ষিণীকৃত্য পরিক্রমা করকে তম উনকো প্রীত শান্তিপূর্বক বনম জঙ্গল কো এব নিসন্দেহ জগাম প্রস্থান কিয়া হ তব অনুবাদ তাৎপর্য কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমতি অভিচরণ ভক্ত স্বামী শিলরূপাদ কি अनुवाद श्री मैत्रेय ने कहा इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उसकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। तात्पर्य तात्पर्य कुछ भाग पढ़ेंगे हम संपूर्ण नहीं, इसका भी पढ़े थे। तात्पर्य जंगल जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, यह कोई मानसिक सैर नहीं जिसे कोई एक करे और दूसरा न करे। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक वानप्रस्थ के रूप में जंगल में जाना चाहिए। जंगल जाने का अर्थ है शत प्रतिशत भगवान की शरण में जाना, जैसा कि प्रह्लाद महाराज ने अपने पिता को बातों बातों में समझाया था, सदा समुद्विग्न ध्याम। मनुष्य क्षणिक भौतिक देह धारण करने के कारण चिंताओं से युक्त रहता है, अतः मनुष्य चाहे कि वह शरीर के प्रति अधिक मोह न करे, उसे चाहे कि वह मुक्त हो। मुक्त होने की प्रारंभिक प्रक्रिया है जंगल जाना, अर्थात पारिवारिक संबंधों का परित्याग करके पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लग जाना। जंगल जाने का यही प्रयोजन है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरूपेश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मदैक बंधु मद संगी मद गुरु मद महानंदन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु नादायिन नाति नीचो ततारक हान मुंच कदाचिन मां प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरः। एवं समुदितस्तेन कपीलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम। भगवान कपिल के द्वारा माता देवहूति को उपाख्यान के पूर्व इस अध्याय में हम कर्दमुनि वन गमन करते उसका वर्णन किया गया। लगभग पिछले कई दिनों से इस विषय पर श्रवण किया जा रहा है और पिछले दो दिनों से इस श्लोक पर हम चर्चा की। एवं समुद्रस्ते न कपिलन प्रजापति दक्षिण कृत्यतम प्रीतो वनमेव जगामः। तो इस श्लोक के द्वारा प्रथम भाव जिसका श्रवण हम कल किए कि जब भगवत वाणी और गुरु की वाणी को श्रद्धापूर्वक जब श्रवण किया जाता है समुद्रस्ते न प्रजापति समुदितः तेन कपिलेन प्रजापति, कपिल के द्वारा कही गई वाणी को सुनकर तम प्रीतो अत्यंत प्रसन्न चित्त शांत हो गए कर्दमुनि और तब वहां वनमेव जगामः। वन की ओर प्रस्थान के या दूसरे शब्दों कह सकते भगवान में अपने मन को निवेशित करने के लिए उस भगवत मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हुए। तो ये प्रथम भाव है जिसे हम कल सुने थे कि जो कोई जीव भगवत मार्ग में जाना चाहता है और विशेष रूप से प्रसन्न होकर जिससे भगवान गीता में भी कहे सुसुखम कर तुम अव्ययम, श्री चैतन्य महाप्रभु कहे आनंदामुदि वर्धनम प्रतिपदम। भक्ति का मार्ग ऐसा है कि वो सदैव आनंद प्रदान करने वाला है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति के छह लक्षणों का वर्णन किए। तो सर्वप्रथम लक्षण कहा गया कि भक्ति जब हृदय में प्रकट होती है उसका प्रथम लक्षण क्या है, क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि अर्थात जितने संसार के क्लेश हैं बस मच्छर को छोड़कर, वर्षा काल में शायद मेरी अधिक परीक्षा ले रहे हो, तो जितना आदि भौतिक आदि आत्म आदि दैविक क्लेश आदि है इस ताप का प्रभाव क्रमशः नष्ट हो जाता है पूर्णतः जब भक्ति मार्ग में आते हैं। परंतु कब होता है, जब समुदितः तेन कपिलेन, जब हमारे जीवन का केंद्र भगवान की वाणी बन जाती है। आध्यात्मिक शब्द जब जीवन का केंद्र हो तो जीवन में प्रसन्नता रहती है और आध्यात्मिक शब्द यदि जीवन में केंद्र में न रहे, मतलब प्रत्येक कार्य के साथ यदि भगवत वाणी भगवान का नाम, जिस तरह से आप यहाँ भागवतम क्लास के बाद पूरा दिन मंदिर में जब दर्शन करेंगे आप देखेंगे कि पूरा दिन महामंत्र का मशीन चलते रहता है बैकग्राउंड में। आप दर्शन करें, आप कोई भी यहाँ पर कार्य करें मंदिर में, परंतु पीछे चल ही रहा है महामंत्र। तो मशीन लगाने का प्रयोजन यह नहीं कि मशीन बस मंत्र बोलती रहे। जिस तरह से मशीन जब अजगोविंद रूप बटन दबा देती तो निरंतर चलती रहती जब तक वो बटन को बंद नहीं किया जाए, तो ऐसा हमारा जब अंदर ऐसा अभ्यास हो जाए, नाम श्वास दो मिलत चलत है ताको भेद मिटावे। इसके पूर्व हम इसको चर्चा किए थे एकादशी के दिन, द्वादशी को, कि श्वास जैसे चल रहा है वैसे जब भगवान का नाम भगवान की वाणी हमारे जीवन का अंग बन जाए तब प्रसन्नता जीवन में होती है। और जब तक प्रसन्नता न हो तो आध्यात्मिक जीवन में सदैव भय रहता है अधः पतन का, कि कोई कितने भी हम अनुभव किए भी है, जितने समय से हम कृष्णवान आंदोलन में रहे तो हम देखते कि कई भक्त आते भी है आंदोलन में, हरे कृष्ण में आते भी है, कई लोग माला भी खरीद लेते हैं, हरे कृष्ण भी करने लगते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग दीक्षा आदि भी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु क्या देखे कुछ समय बाद भी दिखाई नहीं देते, जाने कहाँ गए वो लोग जो 20 साल पहले थे, ऐसे कुछ थे जो 25 साल पहले थे, ऐसे भी कुछ थे जो 15 साल पहले थे, और कुछ ऐसे भी थे जो 5 साल पहले थे, और इनमें से कई अधिकांश ऐसे लोग हैं जो अब दिखाई भी नहीं देते। श्रील प्रभुपाद के समक्ष भी जब किसी भक्त ने आकर कहा कि श्रील प्रभुपाद यह एक भक्त है जो आपसे दीक्षा लिया परंतु अब छोड़कर चला गया आपको, तो श्रील प्रभुपाद कहे कि जो छोड़कर जा रहा है उसके लिए आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, जो टिक गया उसके लिए आश्चर्य है। कि छोड़ना तो स्वाभाविक है कि कई जन्मों से हम संसार में ही रहे तो सहज संसार का आकर्षण पुनः खींच लेता है हमें, परंतु यह प्रथम भाव जो कल हम सुने कि हमारे जीवन में यदि जिस तरह से कर्दम मुनि अपने पुत्र के वचनों को ध्यान पूर्वक सुने तो अंततः वे जब वन की ओर प्रस्थान करने लगे तो एकदम प्रसन्न थे, ऐसे नहीं परेशान होंगे या बहुत टेंशन होगा क्या होगा जंगल के अंदर, वहां कुछ प्रसादम का अरेंजमेंट है कि नहीं, हम तो जहां भी जाते पहले क्या तैयारी रहती है, प्रसादम होगा क्या, वहां पर फिल्टर पानी मिलेगा कि नहीं, इस तरह के विचार नहीं थे, एकदम तम प्रीतो वनम एव जगामह, अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर अंततः वे प्रस्थान किए। तो उस जाने के पूर्व वहां पर वर्णन है कि दक्षिणी दक्षिणी कृत्य तम प्रीतो वनमेव जगाम, क्या किए अब बहुत ही विचित्र है, पिता पुत्र की परिक्रमा कर रहे हैं जाने के पूर्व, यहां पर हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि ने कपिल भगवान की परिक्रमा की प्रदक्षिणा की। तो जब भी हम भगवान के समक्ष आते हैं, भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं, तो उनकी कृपा को प्राप्त करने का एक पद्धति होती है जिसे कहते हैं प्रदक्षिणा करना। जैसे यहां पर भगवान के समक्ष जाते तो कौन कौन सी क्रिया करनी चाहिए, तो वहां पर सर्वप्रथम कहा गया है नारदीय पुराण से श्लोक रूप गोस्वामी भक्ति सामो सिंधु में देते हैं कि सर्वप्रथम जैसे ही भगवान के समक्ष जाए तो सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए, दंडवत एकोपि कृष्णाय कृत प्रणामो दशाश्वमेधा वृथैर्न तुल्य दशाश्वमेधी पुनरेधि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। तो प्रत्येक क्रिया का फल वहां पर रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु में देते हैं, सर्वप्रथम भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से क्या होता है, एक अपि कृष्ण प्रणाम, एक अपि कृष्णाय कृत प्रणामो, एक बार भी कोई जीव जो भगवान के समक्ष आकर नतमस्तक होकर अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता है, दशाश्वमेधेन तुल्य, दस अश्वमेध यज्ञ का फल भी उसके सामने कुछ नहीं है एक प्रणाम के समक्ष। क्यों, तो वहां पर नारद पुराण में कहा गया दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामिन पुनर्भवाय, कि जो दस अश्वमेध यज्ञ करे उसमें बहुत पुण्य है परंतु वह अत्यंत नगण्य है एक प्रणाम के समक्ष, क्योंकि दशाश्वमेध मतलब दस अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत भी इस संसार में पुनः जन्म लेना पड़ता है, परंतु कृष्ण के चरण में एक प्रणाम यदि कर ले तो उसे पुनर्जन्म इस संसार में नहीं लेना पड़ता। और एक अन्यत्र पुराण में भी इसी बात को बताया गया है सकृत प्रणाम कृष्णस्य मातु स्तन्यम पिबेत नहीं, कि सकृत एक बार भी साष्टांग दंडवत प्रणाम यदि कोई भगवान के समक्ष करे मातु स्तन्यम पिबेत नहीं, फिर से उसे मां के स्तन का दूध नहीं पीना पड़ेगा, चलो एक प्रणाम कर ले। और फिर वहां पर कहा गया है कि फिर भगवान के समक्ष अभिवादन करने के लिए खड़े हो जाना चाहिए हाथ जोड़कर, जब भगवान का दर्शन खुलता है तब श्री रुक्मिणी द्वारका अधीश भगवान की ऐसे जय ध्वनि के साथ खड़े होना चाहिए। जब भगवान का कहीं शोभा यात्रा निकलती है रथ यात्रा होती है जहां जहां भगवान दर्शन देने के लिए हमारे समक्ष आते हैं तो अभिवादन के लिए अभ्युत्थानम ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि तुरंत खड़ा होना चाहिए। या नारुडम प्रेक्ष्य समायांतम जनार्दनम अभ्युत्थानम नर कुर्वन पाते सर्व किल विषम, ब्रह्मांड पुराण में कहा गया जैसे भगवान हमारे समक्ष आते हैं मंदिर में दर्शन खुलता है और जैसे आप बैठकर यहां पर जप करो अचानक दर्शन खुला तो क्या करना चाहिए अभ्युत्थानम का है तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। केवल खड़े होने से क्या होगा अभिवादन करने का आदर करने भगवान को खड़े हुए हाथ जोड़कर तो उससे क्या होता है तो यान आरूढ़ पूरा प्रेक्षक समाय, जब भगवान एक तो यान मतलब रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं या दर्शन में जहां भी भगवान जब प्रकट होते हैं तो अभ्युत्थानम नरह कुर्वन जो मनुष्य खड़ा होकर अभिवादन करता है पातयेत सर्व किल विषम समस्त पाप उसके केवल नष्ट हो जाते भगवान के सामने खड़े होने मात्र से है वो। और साथ में फिर भगवान के साथ यदि जैसे कभी शोभा यात्रा चल रही है और शोभा यात्रा में यदि भगवान के साथ में चले रथेन सह गच्छन्ति पार्श्वतः पृष्ठतो ग्रतः विष्णु नैव समा सर्वे भवन्ति श्वपदादय, कि जो रथ चल रहा है रथ के आगे हो रथ के पीछे हो रथ के साथ में जो कोई चलता है विष्णु विष्णु ना एव समा सर्वे, भगवान के जैसा ही हम विष्णु समा सर्वे सारूप्य मुक्ति है सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती केवल शोभा यात्रा में चलने मात्र से भगवान के साथ चलने से। और अंततः जो मैं नीचे का श्लोक देख रहा था तो ऊपर के भी पढ़ लिया मैंने, फिर भगवान के समक्ष खड़े होकर गीत गान करना चाहिए ब्राह्मणो वासुदेवाख्यम गायमानो निशम परम हरे सालोक्यापनोति रुद्र गानादिकम भवेत, कि भगवान के समक्ष जब खड़े हो तो भगवान के समक्ष जोर से गान करना चाहिए भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम, तो क्या होगा परिक्रमा शोभा यात्रा में साथ में चलने से सारूप्य मुक्ति है और भगवान के समक्ष केवल खड़े होकर यदि गान करता है हरे सालोक्यम आपनोति रुद्र गाना गानाधिकम भवेत, केवल गान करने मात्र से उसे सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है मतलब भगवान के धाम में वास मिलता है उस वक्त को जो भगवान के समक्ष गान करता है। और उच्च अगर जोर से अगर गान करे तो उच्च अगर गान किया जाता है तो उसको कहते हैं संकीर्तन नामन लीला गुणा आदि नाम उच्चर भाषा तो कीर्तनम, भगवान की नाम भगवान की लीला को उच्च स्वर में जब गाते हैं तो उसको कीर्तन कहा जाता है। कृष्ण इति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी वंती राजेंद्र महापात कोटय, जो भगवान के समक्ष मंगल नाम का कीर्तन करता है महापातक महापातक जो होता है बहुत सबसे बड़े पाप होते हैं वे सभी करोड़ों महापातक भी नष्ट हो जाते हैं केवल उच्च स्वर में गान करने से भगवान के समक्ष। और फिर भगवान के समक्ष जब आप खड़े हो तो गान करते करते आप नर्तन भी करते, अगर नृत्य करें हाथों को ऊपर कर ले नृत्य करने लगे, यो नृत्य प्रहृष्टात्मा भावैर बहुश भक्ति स निर्दहति पापानि मन्वंतर शतेष्वपि। द्वारका महात्म्य में वर्णन किया गया है, प्रहृष्ट अत्यंत प्रसन्न होकर हर्षित होकर भक्ति भाव के साथ भावैश बहु भक्तिना बहुषु भक्ति भक्तितः यो नृत्यति, जो बहुत भक्ति भाव के साथ प्रसन्न चित्त होकर भगवान के समक्ष नृत्य करता है। तो कहा जाता है कि एक मनवंतर अर्थात 71 चतुर्युग, मनवंतर शतेषु मतलब 100 मनवंतर, 100 मनवंतर में जितना पाप किया होगा वो उसी क्षण नष्ट हो जाता है केवल नृत्य करने मात्र से। हरि बोल। और अंततः भगवान के समक्ष आप प्रणाम किए, भगवान का अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए, भगवान के नाम का उच्चारण किया, फिर नृत्य किया और अंततः फिर भगवान की प्रदक्षिणा करनी, परिक्रमा जो आज का शब्द था उस शब्द के लिए मैं इस भक्ति साम सिंधु ग्रंथ को देख रहा था। तो वहां पर विष्णु प्रदक्षिणम कुरुवन यस्तत्रावर्तते पुनः तदेव आवर्तनम तस्य पुनर्ना आवर्तते भवे। हरि भक्ति सुदय में दिया ये विष्णु प्रदक्षिणा कुरु यस्य तत्र आवर्तते पुनः, भगवान का आवर्तन, आवर्तन मतलब ऐसे परिक्रमा करना, जो भगवान की परिक्रमा करता है उसे संसार के 84 लाख योनियों में फिर से परिक्रमा नहीं करनी पड़ती है, केवल एक परिक्रमा करने वास्ते एक प्रदक्षिणा जब आप भगवान की कर लेते हैं तद एव आवर्तनम तस्य पुनर् न आवर्तते भवे। इस भव सागर की परिक्रमा उसकी उसी क्षण रुक जाती है जब वो एक बार भगवान की परिक्रमा कर लेता है। हरि बोल। स्कंद पुराण में भी लिखा गया है चतुर्वारम भ्रमी विस्तु जगत सर्वचराचरम क्रांतम भवंती विप्रागुई तत्तीर्थम गमनादिकम। इसका अर्थ देखना, शिव से चातुर्मास्य में जब तीर्थ स्थान की तीर्थ यात्रा की जाती है वहां की परिक्रमा का भी विशेष महात्म्य इस तरह से बताया गया। तो जहां कहीं जाते हैं, जब वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, जिस भी धाम में जाते हैं तो आवश्यक होता है इस धाम जाने अनजाने में कई अगर हमसे अपराध हो तो उस अपराध का शमन करने के लिए और कृपा का आह्वान करने के लिए परिक्रमा करनी चाहिए। तो अन्य अलग अलग स्थानों पर भी देखा, जैसे यहाँ पर कर्दमुनि कपिल भगवान की परिक्रमा करते हैं। भागवत प्रथम स्कंद में वर्णन है कि जब अर्जुन श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करने गए तो वहां पर वर्णन है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और जैसे ब्रह्मास्त्र थे अर्जुन एकदम भयभीत हो गए, तो तुरंत उन्होंने श्री कृष्ण को प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम अभयंकर तुम एको दह्यमानानाम अपवर्गोसि संसृते अवृते। हे कृष्ण, हे महाशक्तिशाली भक्तानाम अभयंकर, जो भक्तों के भय को दूर करते, हे श्री कृष्ण तुम एको दह्यमानानाम अपवर्गोसि संसृते। इस संसार में जो जीव जल रहा है अग्नि से, दावाग्नि से, भवसागर की संसार दावानल से जल रहा है, उससे मुक्त करने में सक्षम केवल आप ही है, तो मैं आपका शरण ग्रहण करता हूँ। तब अंततः भगवान श्री कृष्ण बतलाए किस तरह अर्जुन को कि उस ब्रह्मास्त्र का शमन करना है। तो वहां पर भी शब्द प्रदक्षिणी कृत्य, वहां पर शब्द आता है कि क्या किया श्री कृष्ण, सामने ब्रह्मास्त्र आ रहा है और अर्जुन को कहा गया कि तुम उस ब्रह्मास्त्र शमन करो, तो क्या किए, पहले प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के बाद श्री कृष्ण की परिक्रमा की उन्होंने। कई बार हम जब भक्ति के अंग करते तो हमको लगता है बहुत जल्दी होती है ना, हमको इससे ज्यादा इमरजेंसी तो नहीं होंगी ना, आपके पीछे आप किसी के पीछे ब्रह्मास्त्र छुटा हुआ है क्या अर्जुन के भी जो ब्रह्मास्त्र लगा था, फिर भी उसने समय निकाल के आराम से प्रार्थना कर रहा है, ब्रह्मास्त्र सामने आ रहा है। आप कल्पना, आपके सामने रॉकेट छोड़ दिया जाए, रॉकेट आ रहा है, तब आप खड़े होकर प्रार्थना करेंगे क्या? लगभग तीन चार श्लोक है, तीन चार श्लोक में प्रार्थना की अर्जुन ने, फिर परिक्रमा की, फिर ब्रह्मास्त्र का शमन किया। और उसी प्रकार से ब्रह्म विमोहन लीला में आप देखते कि ब्रह्मा जी विमोहित जब हुए तो वहां पे वर्णन है कि वे आए और उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, फिर प्रार्थनाएं की, और प्रार्थना करने पर परिक्रमा की श्री कृष्ण की। वहां पर कौन सा स्थान है? चौमुहा ब्रजमंडल में आता है वहां पर। तो इस तरह से जब भी भगवान के समक्ष आते हम तो अति आवश्यक है, अब कम से मानसिक तो कर सकते हैं। अब इस्कॉन के मंदिरों में अधिकांश मंदिरों से व्यवस्था नहीं रहती परिक्रमा की, परंतु मानसिक रूप से करना चाहिए। तो परिक्रमा करने से जिन भगवान का हम दर्शन करते, यदि जाने अनजाने में कुछ अपराध हुए तो उसका शमन होता है। और विश्व से कोई भी क्रिया करने के पूर्व या आशीर्वाद लेने का भी एक लक्षण होता है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति का वर्णन किए, जिसमें अंततः वे कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो वहां पर एक भक्ति का अंग बताया गया पाद सेवन। तो परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज एक समय बतला रहे थे विश्व से जब भगवान की आप परिक्रमा करते हैं, पाद सेवन का एक अर्थ होता है कि विग्रह की सेवा करना, भगवान के जो विग्रह श्री विग्रह की सेवा करना, उनका पाद संवाहन करना, जैसे लक्ष्मी जी करती है उसको पाद सेवन कहा गया है। परंतु अपने पैरों को भगवान के मंदिर की ओर तरफ जाते हैं, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते हैं, धाम की परिक्रमा करते हैं, तो इसको भी पाद सेवनम भक्ति कहा गया है। तो इस तरह से कर्दम मुनि परिक्रमा किए और तब अंततः वनम एव जगामः, वन की ओर प्रस्थान किए। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद उसी बात को बतला है कि अति आवश्यक है भक्तों के लिए जो भगवान को पूर्ण शरणागत होना चाहता है कि वह अपने जीवन में वन प्रस्थान अवश्य करना चाहिए। आजकल तो ऐसे जंगल तो ज्यादा दिखाई देते नहीं है, तो वन का एक भाव होता है कि वृंदावन मतलब भगवान के धाम की ओर जाना चाहिए। और फिर पुनः पुनः मेरे मन में विचार कर आ रहा था कल की कथा में वन क्यों कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता 13वें अध्याय में ज्ञान के विभाग का वर्णन किए, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जनम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्य आत्म विनिग्रह वैराग्यम अहंकार असक्तियन विश्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यत्वं समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्ति अविविचारिणी विविक्त देश सेवित्वं अरति जनसंसदि। ऐसे कितने 20 है ना, 20 बातें बताई है श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में। रुद्र अंततः क्या कहते हैं, एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तः अज्ञानम यदतो अन्यथा। ये 20 बात बताइए, ये है ज्ञान और ये है जिसके जीवन में नहीं वो बहुत बड़ा अज्ञानी है। ये 20 बातें, कोई बहुत बड़ा PhD किसी ने प्राप्त कर ली, कोई बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त कर ले तो उसको ज्ञान का मापदंड नहीं कहा है भगवान। भगवान एतद् ज्ञानम, ये ही ज्ञान है। तो 20 बातें जो बताए अमानित्वम से प्रारंभ हुआ, तो वहां पर भी तीन बहुत महत्वपूर्ण बात बताई भगवान। कहते असक्ति, असक्ति मतलब आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, तो अनासक्त होना चाहिए संसार में, किसी भी वस्तु के लिए आसक्ति न हो, ये ज्ञान का लक्षण है। असक्ति अनविश्वंग पुत्रदार ग्रहादिशु, और पुत्र परिवार स्त्री के प्रति एकदम अनासक्त होना चाहिए, मतलब प्रेम हो परंतु आसक्ति न हो, दोनों भिन्न है। जिसे प्रभुपाद कहते हैं स्नेह और आसक्ति। स्नेह होना चाहिए, शुभ से ये भगवान के ही जन है, भगवान ने इनकी सेवा मुझे प्रदान की है तो उनके प्रति स्नेह हो, परंतु उनके प्रति आसक्ति न हो। और फिर वहां पर शब्द आता है विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी, कि ज्ञानी का लक्षण क्या होता है, ज्ञानी विविक्त देश सेवित्वम मतलब एकांत स्थान में रहना अधिक पसंद करता है। अरति जन संसदी, अरति मतलब रुचि नहीं उसे, रति मतलब रुचि, अरति मतलब रुचि नहीं है। जन संसदी बहुत भीड़ भाड़ में बहुत अधिक लोगों के बीच में वो रहना पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं पसंद करता है, बहुत अधिक लोगों के बीच में जब रहते हैं तो एक दोष आ जाता है जिसे कहते हैं बहिर्मुखता। जो भगवान के में मन को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है, कल आप अगला श्लोक जब सुनेंगे जिसमें किस तरह से कर्दम मुनि वन में जाकर क्या किए वह वर्णन किया गया। तो बहुत अधिक संसार के बीच में जब रहते हैं तो मन और चित्त जो भगवान में लगना चाहिए उतना सहजता से लगता नहीं है, तो इसलिए वर्णन है कि एकांत में जाना चाहिए। परंतु प्रमुख रूप से क्यों जाना चाहिए, इसके दो तीन कारण मैं जो विचार कर रहा था। सर्वप्रथम है भगवान ने कहे भगवद्गीता में कि माम एकम शरणम व्रज, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति लेना है। और शरणागति के छह अंग बतलाए गए हैं जिसमें सबसे प्रमुख अंग बतलाया जाता है रक्षिष्यति विश्वास, या दैवी संपदा में सबसे पहला गुण कौन सा है। भगवद्गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा का जब दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन किया, सबसे पहला गुण वहां पर अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो वहां पर सबसे पहला शब्द है अभयम। तो दूसरे शब्दों में जो शरणागत होता है उसका सबसे प्रथम गुण यह होना चाहिए कि भगवान के प्रति निर्भरता। विशेष रूप से जो वन में जाते हैं तो क्या होता है कि स्वाभाविक जब घर से त्याग, घर गृह का त्याग मतलब विशेष रूप से जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है लिविंग वंस कंफर्ट जोन, क्यों घर में क्या होता है, घर में सब आराम से मिलता है ना, घर में भोजन मिलता है, घर में प्रेम मिलता है, घर में स्नेह मिलता है। तो जो कुछ चीजें जो भगवान के प्रति हमारे संबंध को बाधित करती है वह समस्त क्रियाओं को हम त्याग करते हैं। तो भगवान पर पूर्ण निर्भरता के लिए वन में रहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध एक भजन भी है हिंदी में, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। कि जिस अवस्था में भगवान रखे उस अवस्था को वो सहज स्वीकार करता है, भक्त का लक्षण होता है। मैं एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुन रहा था, ये वृंदावन में कुछ समय पूर्व एक शरणानंद जी महाराज करके एक संत होकर गए, शरणानंद महाराज बहुत प्रसिद्ध संत। उनकी क्या विशेषता थी, वृंदावन में रहते थे और वृंदावन से अकेले पैदल चलकर गंगोत्री तक जाते थे, कम से कम 7 बार किया उन्होंने ऐसा, वृंदावन से पैदल चलकर गंगोत्री तक जाना और गंगोत्री से वापस आना, फिर गंगोत्री गए फिर गंगोत्री से वापस आए, 1 बार हुआ 2 बार, और हर बार अकेले जाते थे। तो इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार जब हो गया, फिर एक बार पुनः जब जा रहे थे तो गंगोत्री आश्रम हरिद्वार से गुजर रहे थे, तो हरिद्वार से गुजर उनका नाम बहुत था, वृंदावन में भी नाम है। तो वहां पर एक नवयुवक ने देख लिया, उनको पता चल गया ये तो वृंदावन में रहने वाले शरणानंद जी महाराज है जो हमेशा अकेले जाते हैं, किसी भी स्थान पर अकेले निकल जाते हैं, किसी को साथ में नहीं रखते। तब उन्होंने तुरंत उनके पास गए, प्रणाम किया, बोले मेरा प्रणाम स्वीकार करें, एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है। बोले पूछो क्या प्रश्न है। तो वो कहे कि महाराज जी आप हमेशा अकेले निकल जाते हो, आप तो वृंदावन के इतने बड़े संत हैं, आपके तो कई शिष्य भी है, आपके कई अनुयायी है, एटलीस्ट 8-10 शिष्यों को साथ में ले जाया कीजिए, अकेले में कभी कुछ हो गया तो, किसी ने आपके ऊपर हमला कर दिया, कहीं अपघात हो गया, कहीं आप गिर गए तो क्या होगा, किसी एक को तो साथ में रखिए, अब अकेले क्यों जाते हैं। तो बोले कि ऐसा करो थोड़ा साथ में ही चलो मेरे, उत्तर दे दूंगा चलते चलते। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर कुछ दूरी तक चले। तो बोले यहां पर कोई बहुत ऊंची पर्वत है क्या, बहुत ऊंचा कोई शिखर है क्या, वहां पर मुझे लेकर चलो। इस नवयुवक ने कहा ठीक है। तो फिर नवयुवक और शरणानंद जी महाराज चले गए और एक उच्च पर्वत शिखर, वहां से हरिद्वार से ऋषिकेश के जाते समय एक उच्च कोई पर्वत शिखर था जिसके सामने कोई खाई होंगी, वहां पर लेकर गए। जो ऊपर जब पहुंच गए तो फिर शरणानंद जी महाराज ने कहा कि अब एक काम करो, क्या करो कि मुझे जोर से पीछे से धक्का मार दो। बोले नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। नहीं बोले तुम मुझे बड़ा संत मानते हो ना, तो मेरा आदेश है और एक साधु के आदेश को अगर पालन नहीं करोगे तुमको नरक में जाना पड़ेगा, धक्का मारो मुझे। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे तुम नरक में जाओगे, यदि साधु की वाणी को नहीं सुना तो निश्चित रूप से तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। उसने कहा कुछ भी हो जाए परंतु मैं इतना बड़ा अपराध कैसे करूंगा, आपको मैं धक्का कैसे मार सकता हूं। तब शरणानंद महाराज बस यही तो प्रश्न का उत्तर है, अरे हमारे तो अभी 2 घंटे पहले तो पहचान हुई है, जान पहचान नहीं परंतु तुम जैसा एक साधारण सभ्य व्यक्ति भी मुझे धक्का देकर गिराना नहीं चाहता, तो जिस भगवान पे मैं पूर्ण आश्रित हूं वो मुझे क्यों गिराएंगे इस संसार में। अगर उन पर मैं पूर्णतः आश्रित हो जाऊं तो वो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। अरे साधारण इस संसार का मनुष्य आपको धक्का नहीं देता है, तो अगर आप भगवान का आश्रय ले ले तो भगवान क्यों गिरने देंगे। तो यह जो पूर्ण निर्भरता है, सबसे मैं एक ही भाग दे, वैसे कई अलग अलग प्रसंग भी है, कई भक्त जो वन में गमन किए उनका, तो उसमें से मैं एक ही प्रसंग, अन्य प्रसंग तो बहुत सारा विषय था कहने के लिए परंतु सभी विषय को हम नहीं कहेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जब श्री नारद मुनि अपने पूर्व जीवन में छोटे बालक थे, अंततः संत महात्माओं का संग प्राप्त हो, संत महात्माओं की संगति से सहज भगवान के प्रति अनुराग हो गया, निरंतर भगवान की भजन करने लगे। परंतु क्या हुआ कि वे सदैव अपने माँ के साथ रहते थे, माँ पर आश्रित थे, एकात्मजा थे, मे जननी योशिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजन निगत चक्रे स्नेहा अनुबंधनम, मेरी माँ थी और मेरी माँ के जीवन में मुझे छोड़कर कोई नहीं था और मेरे जीवन में मेरी माँ को छोड़कर कोई नहीं था, तो हम दोनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह था। मेरी माँ मुझे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रखती थी, परंतु एक समय सा स्वतंत्रा न कल्पा से योगक्षेम इच्छति ईश्वस्य वशे लोक योषा दारुमय था। एकदा निर्गताम गेहा दुहंतम निशिगाम पति सर्पो दशपदा स्पृष्ट कृपणाम काल चोदिता, कि एक समय वह दूध लेने के लिए मेरी माँ जब मेरे लिए गई तो अचानक भगवत योजना से ही, भगवान की इच्छा से, भगवत इच्छा से एक सांप ने डस लिया, जैसे सांप ने डसा तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई, और जैसे मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मैंने क्या विचार किया, अनुग्रह मन्यमान प्रतिष्ठम दिशम उत्तराम, मैंने तुरंत मन विचार किया कि भगवान का अनुग्रह हो गया है, माँ की मृत्यु हो रही है और क्या कह रहे कृपा है, भगवान की कृपा है, प्रतिष्ठम दिशम उत्तराम, अकेले ही निकल पड़े उत्तर दिशा की ओर। और वहां पर बतलाया जाता है स्वितांजन पदास्तत्र पुरा ग्राम व्रजाकरान खेट करवट वाशिष्ट वनानि उपनानि च, तो वे जब निकल गए तो निकलते समय फिर जितने अलग अलग नगर आए, ग्राम आए, खेत खलिहान आए, सभी को पार करते गए, सभी से आगे निकलते गए, चित्र विचित्रा द्री निभग्न भुज द्रुमान, मतलब बहुत बड़े खनिज भी थे सोने चांदी के, वो भी सामने आए, पर्वत आए, सुंदर जलाशय आए, तो उन सभी को पार करते हुए वे निकल गए। तो वहां पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य इस बात को लिखे हैं, जो वो कहते हैं नारद मुनि, मैं एक छोटा सा बच्चा था, एक 4-5 साल का बच्चा है, बहुत ही घने जंगल में मैं निकल गया जहां पर चलना भी कठिन था, ऐसे रास्ते थे, दुर्गम रास्ते थे वन के, जहां से निकलना बहुत कठिन था, घोर प्रतिभयाकारम व्यालो लूक शिवाजिरम, अंधकार पूर्ण एकदम जंगल था, जैसा कोई हॉरर मूवी में जैसे देखते उस प्रकार का, और उसके अंदर व्यालो लूक शिवाजिरम, व्याल व्याल मतलब सर्प, भयानक अजगर थे, उलूक उलूक मतलब उल्लू, तो उल्लू थे, भयानक सर्प थे, और अजीरम शिवाजिरम मतलब सियार, तो जंगली भेड़िए रहते थे, सर्प आदि अजगर थे, तो उन सबके बीच में से मैं निकलने लगा, तो स्तुतिल तात्पर्य का थोड़ा भाग में मुझे स्मरण हुआ, इसीलिए मैंने इसको खोल दिया। श्रीपादित किसी भी परिव्राज्य का आचार्य का यह कर्तव्य है कि वह समस्त जंगल पर्वत नगर ग्राम आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए और साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित करे। सन्यासी को भय त्याग करके सारे संकट उठाने पड़ते हैं। सन्यासी आवश्यक होता है, शिव जो वानप्रस्थ लेता है, जो भगवान में अपने मन को स्थिर करना चाहिए, भगवान के प्रति निर्भरता को बढ़ाना चाहिए। तो बहुत अधिक जब हम घर में रहते हैं, सुख सुविधाओं में जब रहते हैं और शहरों के बीच में जब रहते हैं, तो बहुत अधिक सुख सुविधाएं क्या करती है, भगवान के प्रति हमारे निर्भरता को कम कर देती है। कुछ लोग होते कि आजकल तो वो कूलर चाहिए, तो एसी चाहिए, तो मोबाइल चाहिए, इसके ऊपर निर्भरता अधिक बढ़ने लगी। परंतु इस तरह का जब जीवन हो जाए आपका कि वन गमन जब करते हैं, मतलब संसारिक जो आवश्यकताओं का आप जब त्याग करते हैं, तो सहज भगवान के प्रति निर्भरता बढ़ती है। यहां पर लिखे प्रभुपाद की मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में जीवन बिताए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से संन्यास ग्रहण किया है, यहां पर वो करते हैं वर्णन करते हैं। और किस लिए ग्रहण किए, कि भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की है उन्होंने, और उसके लिए वे निकल पड़े थे। तो इसी तरह से यहां पर नारद मुनि के पूर्व जीवन का वर्णन है, श्री सुखदेव गोस्वामी का वर्णन किया गया है, स्वयं भगवान रामचंद्र का वर्णन हम स्मरण करते हैं कि किस तरह से वे वन गमन किए। तो ये जो पारिवारिक स्नेह के संबंध को त्यागने का पुनः पुनः यहां पर कहा जाता है। जैसे एक मैं पद पढ़ रहा था एक संत का, बार बार कहो तो ये सावधान क्यों न होई, ममता की मौत सिर काहे को डरत है। कि पुनः पुनः मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, हे मेरे मन, ये मन को संबोधित किया जा रहा है, ममता की मौत क्यों सिर काहे को धरत है। ये जो ममता है इस संसार की, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, इसको क्यों सिर पर लाद कर तुम चल रहे हो। मेरो धन मेरो धाम, मेरो सुत मेरो वाम, मेरो पशु मेरो ग्राम, भूले ही फिरत है। ये मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा परिवार, मेरे संबंध, इस ब्रह्म में क्यों तू घूम रहा है। तू तो भयो बावरो, बिकाई गई बुद्धि तेरी। तू तो भयो बावरो, बावरो मतलब पागल हो चुका है तो इस संसार के संबंधों में, बिकाई गई बुद्धि तेरी, अपनी बुद्धि बेचकर आया क्या बाजार में, थोड़ी अक्कल भी नहीं है। तू तो भयो बावरो, बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंधकूप के है तामे तू पड़त है। ये भयानक, खुद होके तू अंधे कुएं में क्यों गिर रहा है। सुंदर कयो ही तो ही नेकू न आवे लाज, काज को बिगाड़ी के अकाज क्यों करत है। तो संत जो एक सुंदरानंद दास जिन्होंने पद लिखा, वे कहते सुंदर को नेकू न आवे लाज, तुझे शर्म नहीं आती है, क्या कर रहा है, काज को बिगाड़ी के अकाज क्यों करत है। काज मतलब अरे जिस काम के लिए आया था ये मानव शरीर क्यों मिला था, भजन करने के लिए, काज बिगाड़ के अकाज, जो काम नहीं करना चाहिए उस काम को लेकर बैठ गया। काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है, बालू मही तेल नाही निकसित कहू विधि, पत्थर नहीं बीजे बाहु परिषद घन है, पानी के मथे ते कहू घेऊ नहीं पाइयत। कि मतलब बालू में ही तेल ना ही निकसत कहो विधि, मतलब कितना भी प्रयास कर ले, अगर मिट्टी को तो समझो मिट्टी का मंथन किया जाए, तो मिट्टी का मंथन करने से तेल निकल सकता है क्या, बालू से कभी तेल नहीं निकल सकता है। पत्थर के ऊपर कितना भी बीज रखो, उससे कुछ वृक्ष निकलने वाला है, पत्थर से कोई पौधा नहीं निकल सकता है, बालू से तेल नहीं निकल सकता है। पानी के मथे ते कहो घी ना ही पाई यत, और पानी का मंथन करने से घी निकलने वाला है क्या, और आप पुकसते पूटे कहूं निकसत कर नहीं। और जब आप धान को कूटते हैं ना तो जो छिलका बच जाता है, तो छिलके को फिर अगर अब उसमें का धान निकल चुका है, सिर्फ छिलका है गेहूं का, और उस छिलके को कूट कूट के आप विचार करेंगे उसमें गेहूं निकलेगा, गेहूं निकल सकता है? तो बालू में से तेल नहीं निकल सकता, पत्थर में से पौधा नहीं निकल सकता, और पानी में से घी नहीं निकल सकता है, और खाली जो क्या कहते उसे हाँ जो वो धान कूटने के बाद जो बच जाता है जो भूसा, उसमें से धान अनाज नहीं निकल सकता है। उस तरह से ही ऊसर में बोए कह निपजत अन्न उपदेश। तो उसी प्रकार से जब तक तू इस संसार में भगवत भक्ति में नहीं लगे तब तक तू संसार से नहीं निकल सकता, कितना भी प्रयास कर ले। जिस तरह से मानस में भी कहा गया, वारी मते घृत होए बारु सिकुत्र बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे यह सिद्धांत अपेल। कि एक बार का वारी मते घृत हो, एक बार ऐसा हो जाए कि मिट्टी का मंथन करके घी निकल जाए, सिकता तेल और फिर तेल निकल जाए पानी में से, परंतु बिन हरि भजन न भवत रही यह सिद्धांत अपेल। कि जब तक हरि भजन में नहीं लगेगा तब तक संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। और इस बैरी घर माही तेरे जानत सने ही मेरे, दारा सुत वीत तेरे ये कोशिके सिखाएंगे, और हु कुबलोक लूटे चाहू और हित, ये मीठी मीठी बात कही तोशी लपटाएंगे। तो क्या कहते हैं इस संसार में जो परिवार है, दारा सुत वित तेरे, ये कभी तुमको छोड़ने के लिए क्या कहेंगे, हमारे साथ में ही रहो, हमेशा हमारे साथ में रहो, हमको छोड़कर मत जाओ, मीठी मीठी बात कही तोसु लिपटाएंगे, तुमको पकड़ के रखेंगे हमेशा। ये संकट पड़ेगो जब कोई ना ही तेरो तब, जब संकट आएगा तब फिर कोई साथ नहीं देने वाला, अंत की अंत ही कठिन बाकी पैर उठी जाएंगे, और अंत इतना कठिन हो जाएगा कि तुम पैर भी नहीं उठा पाओगे अपने, ऐसी अवस्था तुम्हारी होने वाली है। सुंदर कहे ताते झूठो है प्रपंच सब, स्वप्न की नहीं ये तो देखे तबिलाएंगे। तो जितना इस संसार के संबंध है ये स्वप्नवत है। तो जैसे आप प्रातः काल होती है कितना भी अच्छा सपना क्यों तुरंत आप उठ जाते हैं, जो मंगला आरती मंगला दर्शन करना है, उसी प्रकार से संसार का संबंध भी स्वप्नवत है। तो इसीलिए आवश्यक है जो भगवत मार्ग में कि संसार के परिवार का जो स्नेह है उसको त्यागने की योजना तो बनानी चाहिए कम से कम। यह मतलब ये सबसे निकृष्ट बात है, एक संसार में मानव शरीर धारण करके कि जीवन के अंतिम क्षण तक अपने परिवार के बीच में ही रहे हो, इसको सबसे निकृष्ट कहा गया है। वहां पर भागवत के प्रथम स्कंद में विदुर उपदेश है धृतराष्ट्र को, वहां पर विभिन्न प्रकार के मृत्यु का वर्णन किया गया, सवई धीर उदारुतः, सबसे श्रेष्ठ मृत्यु कौन सी है, सबसे निकृष्ट मृत्यु कौन सी है। तो निकृष्ट कहा गया है कि जो अपने दैहिक संबंध के जो व्यक्ति अपने स्नेही है, अपने पुत्र है, अपनी पत्नी है, अपने पौत्र है, ये आपकी आंखों के सामने हो जब आप शरीर छोड़ रहे हैं, इसको निकृष्ट मृत्यु कहा गया है, क्योंकि पुनः जन्म लेना पड़ेगा अगर इनको देखते हो मरे तो। और फिर उसमें अलग है कि एकदम अविज्ञात गतिर जहियात सवय धीर उदारुतः, अविज्ञात गतिर जहियात, कैसी गति हो अविज्ञात, मतलब आप ऐसी जगह पे मृत्यु जहां पे कोई आपको देखे ना, कोई आपका परिचय का कोई ना हो, जिसके साथ आपका स्नेह हो, जिसमें आपके आ सकते हो, ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके पास ना हो तो यह सबसे श्रेष्ठ कहा गया। तो यहां पर जिस तरह से कर्दम मुनि गृह परित्याग किए, तो प्रथम प्रयोजन की सुख सुविधाओं से पूर्णमय जो जीवन होता है उससे निकलने का अभ्यास, यह वन प्रयोजन का उद्देश्य होता है। दूसरा बतलाया गया कि पारिवारिक स्नेह जो होता है, विशेष से जिसे कहा जाता है कि अलग अलग परमाणु होते हैं, आप मंदिर में आते हैं, आप देखें मंदिर में आते बराबर एक अलग भावना आ जाती है आपकी, है ना, भक्ति भाव आता है। कुछ लोग भले ही नाम जप ना करें पर तो मंदिर में आते रहते प्रभु जी तुम शांति लगती है यहाँ पे, केवल भगवान के सामने बैठने मात्र से। आप वृंदावन में जाते तीर्थ यात्रा तो वहां के परमाणु होते हैं, जिसको कहते भजन के परमाणु होते हो, मतलब वहां आप इच्छा नहीं करेंगे फिर भी भक्ति होने लगती है, वहां पर रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलने लगता है। तो हर एक स्थान में एक विशिष्ट परमाणु होते हैं, तो जब घर में जाते तो घर के एक विशेष परमाणु जिसको कहते मोह परमाणु कहते हैं, एकदम स्वाभाविक मोह जागृत होता है और स्वाभाविक भजन की इच्छा कम हो जाती है। इसलिए प्रहलाद महाराज शब्द क्या प्रयोग किए, आत्मपातम गृहम, जो आत्मा को गिराता है, गृह की परिभाषा क्या है, जो आत्मा को, आत्मा को गिराना मतलब भजन की जो इच्छा है, भक्ति की इच्छा तुरंत कम हो जाती है। यह एक दोष होता है उस परिवार के जो परमाणु रहते हैं, वहां के जो वातावरण होता है, घर का एक अलग ही वातावरण होता है। आप कितना भी अनुभव है जो साधक होते हैं, आप अगर घर में अगर जप करते हो, मंदिर में जप करते हो, उसमें अंतर होता है, और वही आप धाम में जाकर जप करते अंतर होता है। तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए कि समय समय पर वन की ओर जाना चाहिए, मतलब समय समय पर कम से कम गृह का त्याग करना चाहिए, कम से कम साल में एक दो बार तो भी जाना चाहिए। कार्तिक हो तो वृंदावन यात्रा जाना चाहिए, होली का समय है तो थोड़ा मायापुर जाके जाना चाहिए, अभी रथ यात्रा आ रही तो जगन्नाथपुर जाके आना चाहिए। मतलब ऐसे घर गृह को छोड़ना का अभ्यास पहले से करना चाहिए। आप ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे आजकल भी जो सीए करते हैं, जो डॉक्टरी करते हैं, तो डॉक्टरी करने के बाद होता है एक जिसको कहते हैं आर्टिकलशिप, मतलब उसको एक जो क्या कहते हैं दक्ष एक डॉक्टर होगा उसके हाथ के नीचे रहना पड़ता है कम से कम एक आध साल के लिए। जो दक्ष कोई सीए होगा तो उसके हाथ के नीचे रहना पड़ता है जिसको प्रैक्टिस कर, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि अब तुम खुद कर सकते हो। तो वैसे ही इस संसार से एक झटके में तो आप निकलने वाले हैं नहीं ना, आपको कहा जाए कि 5 मिनट में मृत्यु आने वाली, सब वैराग्य आ जाए तब तो आने वाले नहीं। तो वैराग्य को प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। जैसे कुछ यहाँ पर विशेष से यहाँ जो संत आए हुए उपस्थित है कि कम से कम सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में यहाँ आ गए, तो वहां भी तो गृह त्याग है ना, घर छोड़कर आना, एक घर गृहस्थी वाले के लिए सुबह सुबह 7 से 9 यहाँ पर उपस्थित होना, ये भी तो वैराग्य का एक लक्षण है। तो दिन में कुछ समय आप गृह का त्याग करें, महीने में कभी कभी एकादशी हो तो ऑफिस को छुट्टी हो गई, अधिक नाम जप करें, और कम से कम 4 महीने में 3 महीने में समय समय पर भक्तों के सान्निध्य में विभिन्न धाम में जाना चाहिए। तो इस ऐसा अभ्यास से फिर जो सांसारिक संगति जिसको कहा गया अरति जन संसदी, उस सांसारिक संग से आप दूर आते हैं, और फिर वहां पर जाकर क्या होता है कि वहां पर जिस तरह से भागवत के द्वितीय स्कंद में वैसे विस्तृत वर्णन है, जहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते कि भगवान ने हाथ दिए तो तकिए की क्या जरूरत है, और भूमि दिए तो बिस्तर की क्या जरूरत है, मतलब जीवन की आवश्यकताएं कम हो जाती है, क्रमशः जीवन अधिक सरल हो जाता है, भगवान के प्रति निर्भरता बढ़ती है, और तब अंततः भगवान में आप मन एकाग्र कर सकते हैं। अंतिम प्रयोजन यही है, जिस तरह से श्रील स्वरूप दामोदर भी कहते हैं, निश्चिंत कृष्ण भजिब ऐ तो कारणे उन्माद करी लते हो सन्यास ग्रहणे, निश्चिंत कृष्ण भजिब ऐ तो कारणे। अभी हम जब भजन करते हैं पारिवारिक जीवन में रहकर, तो अनुभव क्या है कि चाह कर भी पूरी तरह से अपना समय नहीं दे सकते, जिसको अंग्रेजी में ऑब्लिगेशंस रहती है ना कुछ, कि हमारा पत्नी है, बच्चे है, कुछ ऐसी चीजें जो हमको चाह कर भी पूरा तरह से समय नहीं दे पा सकते हम। तो निश्चिंत कृष्ण भजन के लिए अंततः ऐसा तैयारी करनी चाहिए। हम एक परिवार से मिले भी पूना में, जो लगभग अभी अभी मेरी उम्र के होंगे, 40, 41, 42 के होंगे, तो वे कृष्णवाद आंदोलन लगभग 20-25 वर्ष पूर्व आए, फिर उन्होंने भक्ति की शिक्षा ग्रहण की, फिर तुरंत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, गृहस्थ आश्रम प्रवेश करके फिर संतान आदि भी उनकी हुई, और लगभग अभी उनके 15-20। तो वो जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए तब से उन्होंने प्लान बनाया कि मैं 1-2 संतान उत्पन्न करूंगा, लगभग 20-25 साल रहेंगे, और 25 साल में उनको शिक्षा दे दूंगा, ये करूंगा, और धीरे धीरे 25 साल में पूरा रिटायरमेंट। तो उनका ऑलरेडी मतलब पहले वो जो जब नौकरी करते थे तो लगभग वो 10 घंटा होगा, और फिर उन्होंने उसके नौकरी छोड़कर फिर लेक्चरशिप स्वीकार की, तो 4 घंटे पढ़ाने जाते हैं। और पति पत्नी मिलकर अब धीरे धीरे वानप्रस की तैयारी कर रहे हैं, क्या करते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर 4 घंटे भागवतम पढ़ते हैं। और उनका प्लान है कि इतना प्रो ये साल है, इतने साल जब हो जाएंगे उसके बाद फिर पत्नी भी घर में बैठेंगी बच्चों के साथ, और फिर मैं पूरी तरह से भगवान की सेवा के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो जिस दिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था उस दिन से उसने प्लान कर बना लिया था कितने साल के लिए मैं रहने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि उमड़ते दम तक ही रहूंगा। तो इसको कहते हैं बुद्धिमत्ता। इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में एक विशिष्ट काल के लिए जब रहे और तत्पश्चात उससे मुक्त होकर भगवान की सेवा में पूरा अपना समय समर्पित करने का अभ्यास करना चाहिए, जैसा यहां पर बताया गया। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो सहजता से अपने मन को भगवान में स्थिर कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वन में जाने के पश्चात क्या किया वो आप कल शायद हमारे अजगोविंद प्रभु कर रहे थे, जर्नलिस्ट मौन को धारण किए, मौन व्रत लिया उन्होंने, आत्मैक शरणम मुनि, भगवान में अपने मन को स्थिर करने के लिए मौन तो कई होते, बाह्य मौन होता है, आंतरिक मौन होता है, तो इसकी चर्चा आप कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।